नागरिक विद्रोह ब्रिटिश राज के शुरू के 100 सालों में नागरिक विद्रोहों का सिलसिला लगातार चलता रहा। सत्ताच्युत राजाओं और नवाबों या उनके उत्तराधिकारियों या फिर अपनी जायदाद से बेदखल कर दिए गए जमींदारों, भूस्वामियों और पोलीगारों, दक्षिण भारत के वे जमींदार जो हथियारबंद दस्ते रखते थे, द्वारा इन विद्रोहों का नेतृत्व किया जाता था। कभी कभी अंग्रेजों द्वारा जीती गई रियासतों के बड़े अधिकारी और दरबारी भी इन विद्रोहों का नेतृत्व करते थे। इन विद्रोहों को जनाधार और शक्ति हमेशा शोषित किसानों, दस्तकारों और राजाओं व नवाबों के विघटित सेनाओं के सिपाहियों से मिलती थी। ये स्थानीय विद्रोह आमतौर पर किसी खास मुद्दे और स्थानीय असंतोष के कारण उपजते थे। हालांकि इनका दायरा सीमित हुआ करता था, लेकिन प्रायः इन विद्रोहों में सैकड़ों से लेकर हजारों तक सशस्त्र विद्रोही शामिल हुआ करते थे। दरअसल ब्रिटिश राज द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली में जिस तेजी से परिवर्तन किए गए, उससे इन विद्रोहों ने जन्म लिया। ब्रिटिश राज द्वारा किए गए इन परिवर्तनों ने भारत के कृषक समाज में उथल पुथल कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों ने तकलीफें झेलनी पड़ी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलने और उनकी दरें बढ़ाते रहने की ब्रिटिश राज की औपनिवेशिक नीति ने गाँव में जबरदस्त असंतोष भड़काया। उदाहरण के लिए बंगाल में 30 साल के भीतर ही लगान की दरें मुगल काल की दर के मुकाबले दोगुनी बढ़ा दी गई। जैसे जैसे और जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज फैला, वहाँ वहाँ लगान की दरें इसी तरह बेतहाशा बढ़ती गई। लेकिन अंग्रेजों ने इस बढ़ी हुई राजस्व प्राप्ति का एक भी पैसा गांव के विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च नहीं किया। ब्रिटिश राज की इस नीति के कारण हजारों जमींदारों और पोलीगारों को अपनी जमीन और उससे मिलने वाले राजस्व से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि या तो ब्रिटिश राज ने लगान वसूली का अधिकार ही उनसे छीन लिया था, या फिर आसमान छूती दरों के हिसाब से लगान न चुका पकने के कारण उन्हें मजबूरन होकर जमीन के अपने अधिकार बेचने पड़े। इस प्रकार किसान से उन्हें बहुत सदमा हुआ पहुंचा। वह तो अपनी जगह था ही, लेकिन जब सरकारी अधिकारियों और साथ धनाढ्य व्यापारियों और महाजनों ने इन जमींदारों और वकागीरों की सामाजिक प्रतिष्ठा और चंद पर भी कब्जा जमा लिया, तो उनके अहंग को वाकई चोट पहुंची। इसी तरह अपनी रियासतों से वंचित किए गए राजाओं और नवाबों को भी नए शासकों से अपने अपने बदी चुकाने थे, और उनका उद्देश्य यह था कि वे अपनी पुरानी आर्थिक राजनीतिक हैसियत जिनसे हासिल कर सके। राजाओं और नवाबों की तरह ही अपनी संपत्ति और अधिकारों से वंचित जमींदारों, गैर पोलीगारों में भारी गुस्सा था, और वे भी अपनी खोई हुई हैसियत वापस पाना चाहते थे। राजाओं, नवाबों और जमींदारों के परंपरागत जाति जाति वर्ग के साथ एकजुट होकर किसानों और दस्तकारों द्वारा हथियार उठा लिए जाने के पीछे उनके अपने कारण थे। लगान की लगातार ऊंची दरों के कारण किसान था तो कर्ज के बोझ तले दबते चले गए, या उन्हें अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा। न भूस्वामियों ने किसानों को जो जमीनें पट्टे पर दी, उनका किराया इतना बढ़ा दिया गया उससे पाना भर पाना किसानों के बूते के बाहर की बात हो गई। किराया न चुका पाने वालों को बेदखल करने में इन नए भूस्वामियों को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। इस तरह कृषक तबके की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई। नए कानूनी तंत्र और अदालतों ने गरीब किसानों की जमीनों की बेदखली को और भी बढ़ावा दिया, और उनके शोषण के लिए अमीर तबके का रास्ता और भी साफ किया। लगान, किराया या ब्याज की वसूली के लिए किसानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे। किसानों को कोड़े मारना, अमानुषिक यातनाएं देना और जेल भिजवा देना तो बिल्कुल आम बात हो गई। पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका में निचले स्तरों पर व्याप्त जबरदस्त भ्रष्टाचार से आम आदमी की परेशानियां भी काफ़ी बढ़ गई थी। गरीबों का खून चूसकर छोटे छोटे अधिकारी भी दौलत बटोर रहे थे। पुलिस की जब मर्जी होती लोगों को लूटती, तरह तरह के जुल्म करती और मनमाना शोषण करती। ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड्स ने 1859 में लिखा था कि पुलिस जनता की उत्पीड़क हो गई है और हमारी सरकार के प्रति असंतोष का मुख्य कारण पुलिस द्वारा ढाए जाने वाले जुल्म हैं। भारत में मुक्त व्यापार लागू करने और भारतीय उत्पादकों से मनमाने ढंग से लेवी वसूल किए जाने से भारतीय दस्तकारी उद्योग भी चौपट हो गया, जिससे लाखों दस्तकारों के लिए रोटी तक मुहाल हो गई। फिर राजाओं, नवाबों और जमींदारों के यहाँ इन दस्तकारों का ज़्यादातर माल खपता था, लेकिन इन लोगों की खस्ताहाली के कारण दस्तकारी के सामानों के लिए ग्राहक मिलने भी मुश्किल हो गए, जिससे यह उद्योग बुरी तरह टूटा। धार्मिक नेताओं और परंपरागत रूप से बौद्धिक तबके ने भी विदेशी शासन के प्रति नफरत भड़काने और विद्रोह को उपजाने में सक्रिय भूमिका निभाई। दरअसल दरबारों के पैसे पर पलने वाले ढेरों कवियों, लेखकों, संगीतज्ञों व अन्य कलाकारों और पुजारियों, पंडितों, मौलवियों आदि की हालत भी खस्ता हो गई थी, क्योंकि उनको पालने पोसने वाले राजाओं नवाबों की ऐसी हैसियत ही नहीं रह गई थी। ब्रिटिश राज उन्हें क्यों पालता पोसता? इन विद्रोहों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि ब्रिटिश शासन का पूरा चरित्र ही विदेशी था। भारतीयों की सदियों पुरानी अपनी परंपराओं और स्थानीय रियासतों के प्रति उनकी वतन परस्ती से यह शासन कहीं मेल नहीं खाता था। विदेशियों के पैरों तले दबे हुए भारतीय खुद को अपमानित महसूस करते थे। इस घायल अहम ने भी विदेशियों को अपनी धरती से निकाल बाहर करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। नागरिक विद्रोह का सिलसिला बंगाल और बिहार में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था, और जिन जिन क्षेत्रों को यह औपनिवेशिक शासन निगलता गया वहाँ वहाँ विद्रोह के झंडे बुलंद किए जाते रहे। शायद ही ऐसा कोई साल रहा हो जब देश में अंग्रेजों का सशस्त्र प्रतिरोध न किया गया हो, और शायद ही ऐसा कोई दशक गुजरा हो जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह न हुआ हो। 1763 से 1856 के बीच देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ 40 से भी ज़्यादा बड़े विद्रोह हुए। छोटे पैमाने पर होने वाले विद्रोहों की तो कोई गिनती ही नहीं। बेदखल किए गए किसान, राजाओं और नवाबों के विघटित फौजों के सिपाहियों ने सबसे पहले बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की बुनियाद डाली। यह विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत के 3 साल बाद ही 1766 में बंगाल और बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह शुरू हुआ, जो 1772 तक चला। यह विद्रोह 1795 में फिर भड़का और 1816 तक चला। इसके अलावा पूर्वी भारत में 1783 में रंगपुर और दिनाजपुर में, 1799 में विष्णुपुर और वीरभूम में, और 1827 से 40 तक संबलपुर में बड़े विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में विजयनगरम के राजा ने 1794 में विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगारों ने 1790 में, मालाबार और समुद्र तटीय आंध्र क्षेत्र के पोलिगारों ने 19वीं सदी के पहले दशक में, और पारलेक मणि के पोलिगारों ने 1813 से 14 में विद्रोह किया। पावन कोर के दीवान वेलुतंपी ने 1805 में एक साहसिक विद्रोह का नेतृत्व किया। मैसूर के किसानों ने 1831 में हथियार उठाए। विशाखापत्तनम में भी 1830 से 1834 तक, गंजाम में 1835 में, और कुरनूल में 1846 से 47 में बड़े विद्रोह हुए। पश्चिम भारत भी अछूता नहीं रहा। सौराष्ट्र में 1816 से 1832 तक उसके शासकों ने कई बार संघर्ष चलाया। 1824 से 28 तक और 1839 से 1849 में भारत गुजरात के कोलियों ने भी लड़ाई छेड़ी। महाराष्ट्र में पेशवाओं की अंतिम पराजय के बाद तो लगातार विद्रोहों और संघर्षों का सिलसिला चलता रहा। इनमें 1818-31 का भील विद्रोह चिन्नावा के नेतृत्व में, 1824 में हुआ कित्तूर विद्रोह, 1841 का सतारा विद्रोह और 1844 का कटकरी विद्रोह प्रमुख है। उत्तर भारत की स्थिति भी यही थी। वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 1824 में सशस्त्र विद्रोह भड़का। 1814-17 में अलीगढ़ के तालुकदारों और 1842 में जबलपुर के बुंदेलों ने हथियार उठाए, और 1852 में खानदेश में आग भड़की। 1848-49 का द्वितीय पंजाब युद्ध भी अंग्रेजों के खिलाफ जनता और सेना का विद्रोह था। लगातार विद्रोहों का यह सिलसिला हालांकि काफ़ी लंबा चला, लेकिन विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की ये सारी कोशिशें छिटपुट हुईं और स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहीं। ये कोशिशें एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग भी रहीं। चूँकि इन विद्रोहों के पीछे महज स्थानीय कारण और मुद्दे ही थे, इसलिए ये स्थानीय स्तर तक ही सिमटे रहे। यो इनमें से कई विद्रोहों का चरित्र एक जैसा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि ये कहीं से भी राष्ट्रीय प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि इसका कारण यह था कि इनमें से कई विद्रोहों का जन्म एक जैसी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के कारण हुआ था। भले ही समय और स्थान अलग थलग क्यों न रहे हों, इन विद्रोहों का नेतृत्व करने वाले अर्थ सामंती लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। उनका नज़रिया परंपरागत था। उस समय भी वे अपनी पुरानी दुनिया में जीते थे, नए जमाने के उस हमले से पूरी तरह बेखबर जिसने उनके समाज के चूल्हे हिला दी थी। उनके पास प्रतिरोध तो था, लेकिन कोई दूसरा सामाजिक विकल्प नहीं था। इसका स्वरूप आदर्श और सांस्कृतिक धरातल पुराना था। इसका बुनियादी लक्ष्य शासन और सामाजिक संबंधों के पूर्ववर्ती रूपों को फिर से स्थापित करना था। इस तरह के पिछड़े दृष्टिकोण वाले और बिखरे छिटपुट व अलग थलग विद्रोहों में इतनी क्षमता नहीं थी कि उससे विदेशी शासन को उखाड़ फेंका जा सकता। इसलिए ब्रिटिश राज एक एक कर इन विदेशों को कुचल देने में सफल होता गया। उन्होंने विद्रोह को शांत करने के लिए यह एक चाल भी चली कि जिन इलाकों में विद्रोह अपेक्षाकृत कम उग्र था, उन इलाकों के जमींदारों या उनके उत्तराधिकारियों को उनकी जायदाद लौटा दी, या विद्रोह न करने की शर्त पर उन्हें लगान में कुछ रियायतें दे दी। और जो लोग वाकई उग्र थे, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा फेंके गए टुकड़ों की तरफ जीभ नहीं लपलपाई, उन्हें मार डाला गया। कुछ एक उदाहरण तो बहुत निर्मम है, जैसे वेलू थम्पी को उसके मर जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने इन नागरिक विद्रोहों का जिस निर्ममता के साथ दमन किया, उसका ही यह नतीजा था कि 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल सका और पूर्वी व पश्चिमी भारत के भी ज़्यादातर इलाकों में लोगों ने 1857 के विद्रोह से अपने को अलग रखना ही बेहतर समझा। इन इलाकों में जब अंग्रेजों ने रियासतें जीती थीं तो उसके खिलाफ विद्रोह भड़के थे, लेकिन निर्मम दमन ने उनके मनोबल को इस बुरी तरह कुचल दिया कि वे राजनीतिक रूप से पूरी तरह निष्क्रिय हो गए।